समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनिता आनंद। हाय अनिता।
हाय चारू।
सो अनिता, देखो ना, संस्कृति क्या है, कभी गीत बनकर कभी नृत्य बनकर जीवन जीने की हमारी चाह का, हमारे एहसास का मन से छलक जाना। और आज हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें आयोजन से नागालैंड झूम रहा है, उनके साथ झूम रहा है पूरा देश और हमारे देश में आए पर्यटक, हमारे मेहमान। आज थोड़ा इतराना तो बनता है। आज हमारी संस्कृति की एक और जीती जागती परंपरा एक बार फिर दुनिया को हमारी तरफ खींच रही है। क्या कहती हो अनिता, उत्सव के इसी जोश के साथ शुरू करें आज का सफर।
एब्सोल्युटली, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। चारू,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की।
7 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना।
नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी।
World AIDS Day is being observed today with focus on raising awareness and correct approach to treatment.
चक्रवात फिंजल के आज शाम तक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना, सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को पुदुचेरी में बचाव अभियान जारी।
And in badminton, Indian ace shuttlers PV Sindhu and Lakshya Sen to be in action for the title clash in Syed Modi International Tournament in Lucknow. And time now for our segment Deadline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we talk about the World AIDS Day. World AIDS Day is dedicated to raising awareness about acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS, promoting rights-based approaches to HIV treatment and fighting the stigma and discrimination against those living with HIV. World AIDS Day was first observed in 1988 when the World Health Organization, WHO, recognized the day. And today we take a moment to reflect on how far we've come in the fight against HIV, celebrate the progress made, and most importantly, look forward to the work that remains to be done to end AIDS as a public health threat by the year 2030. The theme for this year's World AIDS Day is Take the Right Path. This theme emphasizing that human rights and community leadership are central to ending AIDS for good.
बिल्कुल, विश्व एड्स दिवस जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है, सबसे अधिक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों में से ये एक है। और ये दिन जागरूकता बढ़ाने, HIV AIDS के खिलाफ लड़ाई में जीत का जश्न मनाने का अवसर देता है। 2024 में विश्व एड्स दिवस का ध्यान न केवल HIV की रोकथाम, देखभाल और उपचार में हुई प्रगति को देखने पर है, बल्कि अनिता, ये जो है ना, चल रही जो ये चुनौतियां हैं
जी
और कमियां हैं उनको दूर, बहुत दूर करने के लिए भी है। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी बाधाएं हैं जो कई लोगों को महत्वपूर्ण सेवाओं और उपचार तक पहुंचने से रोक देती हैं।
बिल्कुल, एंड एट द कोर ऑफ दिस ईयर्स थीम टेक द राइट्स पाथ इज अ कॉल टू रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अचीविंग एन एड्स फ्री वर्ल्ड। It's about ensuring that everyone, no matter what their background, gender or economic status, has access to care and support without fear of discrimination. In India, the National AIDS Control Organization, NACO, has been playing a pivotal role in the national response to HIV and AIDS. Since 1992, NACO has been at the forefront of addressing the challenges of HIV, aiming to reduce the number of new infections and increase access to life-saving treatment for those affected. NACO's efforts are not only about providing treatment, but also working to break down the stigma and the discrimination that people living with HIV often face, sadly. The goal is clear, end AIDS as a public health threat by the year 2030.
बिल्कुल, जैसा कि हम ह्यूमन राइट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये याद रखना भी जरूरी है कि प्रभावी एचआईवी प्रतिक्रिया के लिए अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है और एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ना मानव अधिकारों में प्रगति की निकटता से जुड़ी हुई है, लेकिन ये सुनिश्चित करने में अभी भी वक्त लगेगा कि उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और उन्हें वो देखभाल मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। देखिए, हम जानते हैं कि हाशिए पर पड़े समूह जैसे ड्रग्स इंजेक्ट करने वाले लोग, यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अक्सर भेदभाव और कलंक का सामना करते हैं और ये बाधाएं उनके लिए उपचार और सहायता तक पहुंच को कठिन बनाती हैं और आखिर में महामारी को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधा डालती हैं, है ना?
जी बिल्कुल। एंड वी ऑल नो चारू दैट एंडिंग Although ending AIDS is an ambitious goal, but it is also achievable if significant work is done for it. The progress we've made with increased access to treatment as well as prevention services give us hope. But it's crucial that we address the challenges that remain, including tackling the stigma and ensuring that human rights are upheld for all people, regardless of their circumstances. Now let's take a look at some of India's efforts to prevent it. According to HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017, the central and state governments shall take measures to prevent the spread of HIV or AIDS. India has made antiretroviral therapy, ART, affordable and accessible to over 90% of people living with HIV in the world. Project Sunrise was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2016 to tackle the HIV, offering pre-exposure prophylaxis medications to individuals at high risk of contracting HIV can significantly reduce the chances of infection. Charu,
और एड्स को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उन सभी लोगों तक पहुंचें, उनका समर्थन करें जो प्रभावित हैं या जोखिम में हैं। और आज हम विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत या हाशिए पर रखा गया है। सुरक्षित यौन संबंध, चिकित्सा हस्तक्षेप, शिक्षा, कलंक और भेदभाव को समाप्त करके सामुदायिक समर्थन, परीक्षण और प्रारंभिक निदान के माध्यम से एचआईवी के संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है, जिससे एड्स की प्रगति को कम किया जा सकेगा। एचआईवी एड्स के खतरे को खत्म करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी में हमें लगातार प्रयास करना जरूरी है।
जी,
और देखिए, स्वास्थ्य सेवा, सहायता प्रणाली और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके हम एचआईवी और एड्स के खतरे से मुक्त दुनिया की नींव रख सकेंगे।
राइट, वेदर थ्रू एजुकेशन, एडवोकेसी और सिंपली शोइंग सपोर्ट फॉर दोज लिविंग विद एचआईवी, एवरी एक्शन काउंट्स। वी एनकरेज यू टू स्टे इन्फॉर्म्ड, गेट इन्वॉल्व्ड एंड सपोर्ट एफर्ट्स दैट प्रमोट हेल्थ इक्वालिटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिग्निटी फॉर ऑल।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष।
जी,
तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं?
श्रीनगर चलते हैं पहले।
चलो।
द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC कंक्लूडेड इट्स सेकंड फेज ऑफ 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑन 27th ऑफ नवंबर एट SKICC इन श्रीनगर। द सेलिब्रेशंस विद द थीम क्राफ्ट, क्रिएटिविटी एंड कंपैशन वर हेल्ड इन टू प्लेसेस। द 3-day फर्स्ट फेज कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली ऑन 23rd ऑफ नवंबर एट SKICC स्टॉल्स had been set up by the artisans from different North Indian states apart from Jammu and Kashmir. The exhibition remained open to general public for last 2 days as scores of craft lovers, craftsmen and general public witnessed the unique display of craftsmanship of country's artisans besides that of Jammu and Kashmir. So we have a report.
There has been a remarkable increase in exports of handicrafts, which has risen from 563 crores in 2021-22 to 1,162 crores in 2023-24. Talking to Parikrama, Director Handicrafts Kashmir Mahmood Ahmad Shah talked about the significance of the 60th celebration program of World Craft Council in Srinagar.
It was in two phases. First phase happened in Delhi for 3 days from 21 onwards, and then happening in Srinagar. So it's the first time that the delegates from World Craft Council have visited Kashmir for the first time, and they did the craft tour, and they are seeing the craft up close. So this is their first exposure to the immense craftsmanship of Kashmir. And likewise, we have also bought artisans from Central Asia. We have a great deal of influence from Central Asia.
Earlier, Chief Minister Omar Abdullah had deliberations with the national and international delegates of World Craft Council in Delhi, who presented various policies and initiatives of the government for the development and progress in handicraft sector in Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor Manoj Sinha, in his inaugural address at SKICC Srinagar, complimented and appreciated the invaluable cooperation of World Craft Council and other stakeholders. He lauded the hard work of Directorate of Handicrafts in taking forward the government initiatives for the progress and development of handicraft sector in Jammu and Kashmir. The result of establishing World Craft Hub and International Crafts Museum in Srinagar is described as a milestone chiseled out of the collaboration of J&K government and the World Craft Council. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani, Srinagar.
And now we go over to Mumbai. Amerigo Vespucci, an Italian naval ship, is currently visiting Mumbai as part of its World Tour 2023-25, along with Villaggio Italia, Italian village set up near the ship's berth to showcase Italian art and culture. The visit is being viewed as a symbol of long-standing friendship between India and Italy. More from our Mumbai correspondent.
Amerigo Vespucci is the oldest active military vessel in the Italian Navy and was named after the 15th century Italian explorer and navigator Amerigo Vespucci. Its motto, "Not who begins, but he who perseveres," is inspired by the words of Leonardo da Vinci. Let us hear more about the vessel and its ongoing journey from Junior Lieutenant Gabriel De Murtas, the navigator of Amerigo Vespucci.
Amerigo Vespucci is a 93-year-old ship and was built in 1931. It's a training ship because the cadets of the academy have to spend 3 months on board in order to learn the basics of the navigation. On board, we are 200 crew members.
The ship will stay in Mumbai from 27th November to 2nd December, during which time the Indian Navy and the Italian Navy will engage in sports activities, cultural exchanges, and hold press conferences on topics such as space and the blue economy, among other activities. Around 40,000 guests are expected to visit the event during the vessel's stay in Mumbai before it departs for its next leg of the voyage. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
Tonita, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इफी 28 नवंबर को समाप्त हुआ है, तो आप क्या लेके चलेंगे उस तरफ?
जी, अ स्टार स्टडेड क्लोजिंग सेरेमनी एट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम इन गोवा वाज अ ट्रीट टू एवरीवन्स आईज. Over 9 days, the festival showcased more than 200 films from no less than 75 countries, celebrating the diversity and power of global cinema. A report.
The jury for this year's IFFI was chaired by acclaimed Indian filmmaker Ashutosh Govarikar, which awarded top honors in the various categories. Among the major winners, actor Vikrant Masi won the coveted Personality of the Year for his performances, particularly for his role in The 12th Fail. Another festival highlight was prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, which was given to the Australian director Philip Noyce.
The Golden Peacock Award for the Best Film was given for Toxic, a Lithuanian film. The Best Actress Award was given to Vesta Matulete and Aiva Rupekati for Toxic Movie. Clement Favio, Holy Cow Movie Actor, awarded as Best Actor, and Best Director Award was given to Bogdan Musarenu for The New Year That Never Came. The festival also celebrated achievements in digital storytelling with Lamban, winning the Best Series Award.
IFFI provides an opportunity for the filmmakers to showcase their talents, reach new audiences, and share unique stories. It is organized by the National Film Development Corporation, Ministry of Information Broadcasting, and Entertainment Society of Goa in collaboration. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
अनिता, आपको याद होगा कि शुरू में ही हमने बोला था कि नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वहां शुभकामनाएं दी. तो
इट वाज ऑन दिस डे चारू इन 1963 दैट नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल सेलिब्रेशन हेल्ड एट नागालैंड सिविल सेक्रेटेरिएट प्लाजा इन कोहिमा एंड ऑन द ओकेजन द चीफ मिनिस्टर नेफ्यूडियो एड्रेस्ड द गैदरिंग. वी हैव अ रिपोर्ट.
Fellow citizens, on this statehood day, I appeal to each and every citizen of the state to work together to bring smile and happiness into our lives.
In line with the state's vision for progress, Chief Minister Nipio Rio also launched several important initiatives aimed at improving governance and education in the state. The celebration was marked by special presentations and cultural events. Akashwade News, Asunyo from Kohima.
And after months of hectic preparations, Nagaland is all set to host its famed Hornbill Festival at the Naga Heritage Village, Kisama, which is about 12 kilometers from the state capital, Kohima. This year marks the 25th anniversary of the Hornbill Festival, which took flight in 2000. It was initially a three-day event before being extended to 10 days in view of the huge traction it received from visitors. Today, it has turned into a major tourist attraction also, with people from various countries flocking in to witness the rich cultural heritage and tradition of the state.
This year's festival hosts dignitaries and representatives from nations including the Wales, the United States, Japan and Peru, along with participation from Indian states like Sikkim and Telangana as partners. Chief host of the festival will be Nagaland Governor Laganasant. Host will be Chief Minister Nipio Rio. Festival host will be Temjani Imna Along, and tribal guests will be Kohima Village Head Jibi Medo Karitsa. This 10-day festival is a convergence of all 17 tribes of Nagaland, offering visitors an immersive experience into the tribal life, local food, traditional games, music and dances, along with the finest handicrafts and textiles and many more. For Akashwani News, Asunyo from Kohima.
And now we go to Agartala. The 60th Raising Day of the Border Security Force was celebrated in a befitting manner at the Frontier Headquarters Tripura at Salbagan in Agartala, the capital of the northeastern state of Tripura. We have more on this from our Agartala correspondent.
Gracing the occasion, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha today raised the morale of the BSF Jawans guarding the 856-kilometer long Indo-Bangla border. He said the BSF plays a very important role in thwarting smuggling and cross-border infiltration. The Chief Minister also stressed that as protecting the country is of paramount importance, in a similar way, the security of BSF Jawans is also very important. He categorically praised the BSF for maintaining a cordial relation with the people from Bangladesh. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani Agartala.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Aaj ki kadi mein hum yaad kar rahe hain Swatantrata Senani Rashtravadi Sucheta Kripalani ko. उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थीं। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं।
स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे।
वे 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन जन कल्याण के लिए काम करती रहीं।
आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है।
काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया।
स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन।
आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था,
इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द इंटरनेशनल एस्पेक्ट इन दिस एज ऑफ द बिल्डिंग अप ऑफ वन वर्ल्ड। वी कैन नॉट टॉक अबाउट सेपरेटिंग नेशंस। वी हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू बिल्ड अप दैट वर्ल्ड ऑफ विच इंडिया शैल बी अ वर्थी पार्टनर। बिकॉज Not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end, we must work. Towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए।
1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम।
And now for the latest in sports over to Charu।
लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने चीन की वु लाओ यू को लगातार गेम में 21-14, 21-16 से हराया। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जेंग और ली कियान की जोड़ी को 21-18, 21-11 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर की जिया हैंग जेसन थे से हो रहा है।
And that brings us to the last segment of our program, wherein we remember the celebrities born this day or who passed away today. We begin this segment with the birthday of Bette Midler. Born on this day in 1945, the American actress, comedian, singer and author. Throughout her 5-decade career, Midler has received numerous accolades, including 4 Golden Globe Awards, 3 Grammy Awards, 3 Primetime Emmy Awards, 2 Tony Awards and a Kennedy Center honor, in addition to the nominations that she got for 2 Academy Awards and also a British Academy Film Award. I'm playing a song sung by her, Wind Beneath Her Wings.
It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory.
beneath my wings. Today is also the birthday of the Irish singer-songwriter who achieved his most significant success during the early 1970s with hits such as Alone, Again, Naturally, Claire, and Get Down. His songs are often marked by his distinctive percussive piano playing style and also observational lyrics using the wordplay. I'm playing the song, one of the songs by him, Why Oh Why.
Why is it you must be so very cruel to me in order to be kind? Why, when I hold you close, do you insist your toes are being stood on by mine? Why, when I kiss your lips, do you astound me, saying that you won't put your arms around me? No one should be that cold. Whatever I've done, surely I've arrived to know why.
Aur Anita, aap baat karte hain swatantrata senani, lekhak aur gandhivadi chintak Dada Dharmadhikari के बारे में. उनका निधन आज ही के दिन 1985 को हुआ था. सविनय अवज्ञा आंदोलन में दादा को जेल भेज दिया गया. रिहा होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधि के केंद्र वर्धा में बसने का फैसला किया और हिंदी पत्रिका सर्वोदय का संपादन संभाला. उनके पास गांधी सेवा संघ की जिम्मेदारी भी थी और कई लोग गांधी जी से मिलने उनके घर आते थे. और उनकी पत्नी दमयंती बेन एक धनी परिवार की बेटी थी, पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और दमयंती बेन को गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान जेल अधिकारियों के क्रूर व्यवहार के कारण दमयंती बेन को मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया. विनोबा भावे के भूटान यज्ञ में, जी हाँ, भूदान यज्ञ में वो सक्रिय थी और भूदान यात्रा के तहत पूरे देश में यात्रा की उन्होंने. अपनी मृत्यु तक वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे.
एंड टुडे इज आल्सो द बर्थडे ऑफ द इंडियन प्लेबैक सिंगर उदित नारायण झा. वी नो हिम एज उदित नारायण, हुज सॉन्ग्स हैव बीन फीचर्ड मेनली इन द हिंदी फिल्म, बट इज आल्सो सॉन्ग इन वेरियस अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, सिंधी, उड़िया, भोजपुरी, नेपाली, मलयालम, असमीज, बघेली एंड मैथिली. Quite a mouthful. He has won 4 National Film Awards and 5 Filmfare Awards with 20 nominations among many others. The Government of India honored him with the Padma Shri in the year 2009. But before we talk more about him, let's listen to one of the songs sung by him, which became a major hit, Papa Kehte, on Aamir Khan.
Papa Kehte Hai Bada Naam Kare.
वैसे अनीता, ये गाना सुपर हिट था.
एब्सोल्युटली, एंड ही गॉट टू सिंग एक्चुअली एज मेनी एज 21 ऑफ हिज ट्रैक्स फीचर इन द बीबीसी टॉप 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम. अमेजिंग. ही गॉट टू सिंग विद मोहम्मद रफी ऑल्सो इन हिज हिंदी प्लेबैक डिब्यू इन 1920 इन द ईयर 1980 एंड ऑल्सो विद लेजेंडरी किशोर कुमार इन द 1980s. ही फाइनली मेड हिज मार्क इन दिस फिल्म दैट द सॉन्ग वी प्लेड 1988 फिल्म Kayamat Se Kayamat Tak, starring Aamir Khan, his debut film, and Juhi Chawla. His song, we all know, Papa Kehte Hain, was notable performance which earned him his first, incidentally, also Filmfare Award in the 1980s. And he established himself as one of the main Bollywood playback singers. The soundtrack became one of his highest selling albums in the 1980s. And I'll talk more about Udit, but let's listen to another of his songs, which was again a super duper hit, Main Nikla Gaddi Leke.
Main nikla o gaddi leke o raste par o sadak mein ek mod aaya, main utthe dil chhod aaya, ek mod aaya, main utthe dil chhod aaya.
He received many accolades for his work, including nomination for the 3 Golden Globe Awards, 2 Primetime Emmy Awards and an Independent Spirit Award.
बिल्कुल, अब आज की परिक्रमा बस यहीं तक, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना, मेरी सहयोगी अनीता, हमारी एडिटर जिज्ञासा पांडे और प्रोडक्शन असिस्टेंट मोहम्मद आजम को, इस उम्मीद के साथ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, नमस्कार।